विश्व दर्पण। श्रोताओ, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। आज हमारी चर्चा का विषय है सीरिया संकट की ताजा स्थिति। मार्च 2011 से शुरू होने वाला सीरिया संकट लगभग 5 साल का समय पूरा करने वाला है। लगभग 5 साल की इस अवधि में कई मोड़ आए और अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीति व कूटनीति पर ये विषय प्रभावी रूप से छाया रहा और क्षेत्रीय व विश्व शक्तियों ने इस मामले में अपनी स्थिति मजबूत करने और दूसरे पक्ष को कमजोर दिखाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में सीरियाई जनता का खून बहता रहा। ढाई लाख से अधिक जाने जा चुकी हैं। मिलियनों सीरियाई नागरिक पड़ोसी देशों में शरण लेने पर विवश हुए और बड़ी संख्या में ये नागरिक यूरोप पहुंचने की कोशिशों में कभी समुद्र की तूफानी लहरों की भेंट चढ़े, कभी क्रूर मानव तस्करों के हत्थे चढ़ गए। यही नहीं, सीरियाई शरणार्थियों को हथकंडे के रूप में भी प्रयोग किया गया और आज भी किया जा रहा है। तुर्की की सरकार ने यूरोप को खुली धमकी दी है कि यदि उसकी मांगें पूरी न की गईं तो वो सीरियाई शरणार्थियों के यूरोप की ओर बढ़ने के प्रयासों में कोई रुकावट नहीं डालेगी। ये सीधी धमकी इस बात की है कि शरणार्थियों की लहर को यूरोप की ओर रवाना कर दिया जाएगा। यूरोप पहले ही शरणार्थियों को लेकर मतभेद का शिकार है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने निश्चित रूप से शरणार्थियों के समर्थन में नीति बनाई, लेकिन इस नीति को लेकर बड़े मतभेद उभरने लगे हैं। खुद मर्केल भी ये मानती हैं।
Without talking before with the people living here and to give them a plan for the future is like a dictator.
पूरे सीरिया राष्ट्र को ध्वस्त करके रख दिया गया सिर्फ इसलिए कि इस देश में शक्ति के बल पर सत्ता बदल दी जाए, चाहे ये सत्ता परिवर्तन किसी भी कीमत पर हो। इस समय भी सीरिया तुर्की, कतर, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के निशाने पर है और ये देश अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इन देशों में हर एक की कोशिश यह है कि उसकी पसंद के बंदूकधारी संगठन मजबूत हो जाएं, लेकिन जमीनी स्तर पर परिस्थितियां अलग हैं। इस समय सीरियाई सेना ने रूस के हवाई ऑपरेशन की मदद से बहुत प्रभावी कार्यवाही की है, जिसके नतीजे में सभी मोर्चों पर सशस्त्र संगठनों को बहुत नुकसान पहुंचा है। सीरियाई सेना को ईरान और हिजबुल्ला लेबनान का समर्थन प्राप्त है और साथ ही स्वयंसेवी बल बड़े साहस के साथ सीरियाई सेना का साथ दे रहे हैं। देश के कुर्द संगठनों का भी सीरियाई सेना को महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। इसी समर्थन के कारण सीरियाई सेना ने हालिया 2 महीनों के दौरान बहुत महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त करते हुए उत्तरी क्षेत्र हलब के कई भागों से आतंकियों को खदेड़ दिया है और तुर्की से आतंकियों को रसद की सप्लाई बंद हो गई है। इस कार्यवाही के कारण आतंकी संगठन दाइश और अनुसरा को भारी माली नुकसान भी पहुंचा है, क्योंकि ये संगठन सीरिया और इराक से तेल चुराकर तुर्की भेजते थे और वहां से ये चोरी का तेल विश्व के अनेक भागों को सप्लाई कर दिया जाता था और ये आतंकियों की आर्थिक आय का मुख्य स्रोत था, जो अब लगभग बंद हो गया है। इस स्थिति से उन देशों में गहरी हताशा है जो सीरिया में चरमपंथी संगठनों की मदद कर रहे हैं। ये देश हरगिज नहीं चाहते कि वार्ता से कोई समाधान निकले और सीरिया संकट समाप्त हो जाए। शुरू ही से इन देशों की कोशिश है कि ताकत के बल पर सीरिया की सरकार का तख्ता उलट दिया जाए। ये विकल्प विफल हो जाने के बाद भी वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने जब से ये पद संभाला है सीरिया के राष्ट्रपति को हर हाल में सत्ता से अलग करने का बयान वो हमेशा दोहराते हैं। वो इस समय भी कह रहे हैं कि सऊदी अरब के पास सीरिया के बारे में एक योजना मौजूद है।
في حال فشل العملية السياسية في سوريا ولكن لا أستطيع أن أتحدث عن هذه الخطة الآن ولا أعتقد أنه من المناسب أن يتم تداول تفاصيل خطة مثل هذه عندما تتأسس في 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 بشكل عام.
سعودي विदेश मंत्री आदिल जुबैर। आदिल जुबैर जिस नई योजना की बात कर रहे हैं वो किसी से ढकी छिपी नहीं है। सऊदी अरब की योजना है कि तुर्की के साथ मिलकर सीरिया में जमीनी सेना उतार दे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि सऊदी अरब यमन युद्ध में बुरी तरह फंसा हुआ है और इस युद्ध ने उसे थका मारा है। अतः यमन वाली रणनीति वो सीरिया में दोहराने की स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि वो बार बार ये कह रहा है कि अपनी जमीनी सेना वो अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के तहत सीरिया में भेजेगा और अमेरिका इस ऑपरेशन का नेतृत्व करेगा, जबकि अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मार्क टोनर ने साफ कर दिया है कि इस प्रकार की कोई भी योजना अमेरिका में विचाराधीन नहीं है, जिससे सऊदी अरब को गहरा झटका भी लगा है। सऊदी अरब का शुरू से ये जोर रहा है कि ताकत का प्रयोग करके सीरिया की सरकार का तख्ता उलट दिया जाए। सीरिया के विदेश मंत्री वलीद मौलिम ने सऊदी अरब की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि जब सीरिया संकट पर वार्ता होने जा रही थी तो सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने वार्ता शुरू होने से पहले ही इसकी नाकामी की बात शुरू कर दी थी।
إذا بتذكروا كان في مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية تركيا والسعودية في الرياض قالوا الوفد حر أن ينسحب قبل أن يبدأ أي شيء كانوا يبشرون بضرورة انسحاب الوفد।
सीरिया शुरू से ही कह रहा है कि वो वार्ता करने के लिए तैयार है और विरोधियों से बातचीत करके सीरिया संकट का समाधान निकालना चाहता है और ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन वार्ता के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं मानी जाएगी। सीरिया के विदेश मंत्री वलीद मौलिम।
الطرف الاخر هو الذي وضع شروطا مسبقه واكرر لن نلبي اي شرط مسبق।
इस समय एक नया मुद्दा नो फ्लाई जोन का छिड़ गया है। तुर्की की सीमा से मिलने वाले सीरिया के सीमावर्ती क्षेत्रों में नो फ्लाई जोन स्थापित करने का प्रस्ताव तुर्की ने दिया है। ये प्रस्ताव तुर्की कई साल से दे रहा है लेकिन उसे समर्थन नहीं मिल पा रहा है। तुर्की चाहता है कि इस प्रकार उसके समर्थन वाले संगठनों को सुरक्षित क्षेत्र मिल जाएगा जहां सीरियाई और रूसी सेना उन पर वायु हमले नहीं कर सकेगी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने नो फ्लाई जोन का समर्थन भी किया।
Part of the reason I have proposed a no-fly zone as a coalition effort, not a United States solo effort, is to have conversations with the Russians at the table. Because the goal of any no-fly zone is not only to provide safe areas for Syrians so they don't have to be fleeing or continue to be bombed by Assad, supported now by the Russians, but to get some leverage to get everybody at the table to try to create as much of a ceasefire, including the Assad forces with the Russians and the Iranians as well.
France aur Germany ka kehna hai ki wo bhi Turki ke prastav par vichar kar sakte hain. France ke videsh mantralay ne ghoshna ki hai ki Germany aur France ke adhikariyon ki shighr hi ek baithak hogi jisme no fly zone ke bare mein vichar kiya ja sakta hai, lekin America ke rashtrapati Barack Obama no fly zone ke vichar ko pehle hi kharij kar chuke hain.
The other new thing that people have suggested would be some variation of a no fly zone or a safe zone. This is something we've been talking about for 3 or 4 years. The challenge there is that ISIL doesn't have an air force, so the damage done there is not against ISIL, it's against the Syrian regime. And what is absolutely true is that we need to make sure that we bring about an end to the civil war in Syria. Creating a safe zone for Syrian refugees, we've tested, you know, we've looked at repeatedly. The problem is that, again, without a large number of troops on the ground, it's hard to create a safe zone like that. And that doesn't solve the ISIL problem.
सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद के वरिष्ठ सलाहकार बुसैना शाबान का कहना है कि सीरियाई सेना की सफलताओं को देखते हुए आतंकी संगठनों के समर्थक बौखलाए हुए हैं।
There are so many unfounded claims that have been made in the Western media about what the Russians and the Syrian army are doing. One, in briefly, I can say that what the Syrian army, in cooperation with Russian aircrafts, are doing are fighting terrorism in Syria. Some countries in the region, like Turkey and Saudi Arabia, are going crazy because they are the ones who are supporting terrorism in Syria right from 2011 until now.
श्रोताओं, इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।